ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सामाजिक संजाल संचालन प्रयोग तथा नियमन संबंधी विधेयक संसद में पेश करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। बुटवल के सुप्रीम सहकारी ठगी आरोप में जिला अदालत रूपंदेही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का बयान हुआ खत्म। और भारत महाराष्ट्र के ट्रेन हादसे में हुई 7 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। सामाजिक संजाल के संचालन प्रयोग तथा नियमन करने के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक 2081 संघीय संसद समक्ष पेश करने की तैयारी की गई है। इसी मार्ग साथ गते हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए सामाजिक संजाल के संचालन प्रयोग तथा नियमन करने के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक 2081 संघीय संसद समक्ष पेश करने की बैठक ने स्वीकृति दी है। इसी तरह बैठक ने अर्थ मंत्रालय संबद्ध संपूरक अनुदान संबंधी कार्यविधि और विशेष अनुदान संबंधी कार्यविधि 2081 स्वीकृत करने तथा सह लगाने संबंधी कार्यविधि 2077 और कोविड 19 महामारी से प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तांतरण कार्यविधि 2078 खारिज करने का निर्णय किया। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति ने सरकार को आग पर काबू पाने और लोगों की संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना बनाने और उसे एकीकृत तरीके से लागू करने का निर्देश किया है। समिति की आज हुई बैठक में आग पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा सावधानियों सहित प्रशिक्षित जनशक्ति और आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था करने का वन तथा वातावरण मंत्रालय और गृह मंत्रालय को निर्देश किया गया। समिति ने सरकार को जंगल में आग लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इसी तरह समिति ने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के लिए काठमांडू घाटी से वैशाख 2082 से आवश्यक तैयारी शुरू करने का वन तथा वातावरण मंत्रालय को निर्देश किया। आंकड़े के मुताबिक नेपाल में हर साल आग लगने से 8 लोगों की मौत हो जाती है और 91 घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने का बयान आज खत्म हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूपंदेही के रिश्तेदार यज्ञ मूर्ति ग्यावाली ने कहा कि हालांकि बयान आज खत्म हो गया है, लेकिन कल फिर से बहस होगी। आज वो बुटवल के सुप्रीम कॉर्पोरेटिव के धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मामले में बयान देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। कोशी प्रदेश के पहाड़ी जिले तेरथुम को मध्य पहाड़ी पुष्पलाल रोप मार्ग द्वारा सुलभ बनाना शुरू कर दिया गया है। 1879 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 117 किलोमीटर तेरथुम में है। लोकमार्ग जो जिले के आठराई गांव पालिका वार्ड नंबर 6 में स्थित तमोर नदी के माझीटार से तेरथुम में प्रवेश करता है। जिले के पुराने व्यापारिक केंद्र संक्रांति, फेदाब, जिला मुख्यालय म्यागलुंग होते हुए पर्यटकीय बाजार बसंतपुर होकर आगे बढ़ा है। करनाली प्रदेश के विभिन्न जिलों में चालू आर्थिक वर्ष में 94 पुल निर्माण के लिए स्रोत निश्चित किया गया है। ये जानकारी प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्रालय ने दी। आर्थिक वर्ष 2083-84 में निर्माण संपन्न करने के लक्ष्य के साथ स्रोत निश्चित किया गया है। ये जानकारी मंत्रालय के सूचना अधिकारी प्रवीण कार्की ने दी। बेली ब्रिज 1 साल के भीतर और अन्य पुल 2 सालों के भीतर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के जिलों में आज सुबह से फिर घने कोहरे के साथ शीतलहर शुरू हो गई है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर कार्यालय ने जानकारी दी है कि कोहरे के कारण काठमांडू से जनकपुर के लिए कोई उड़ान नहीं हो सकी। चूंकि सुबह ठंड बढ़ गई है, डिवीजन वन कार्यालय धनुषा ने विभिन्न स्थानों पर आग जलाने के लिए निःशुल्क लकड़ी वितरित की है। ठंड बढ़ने के बाद वीरगंज महानगर पालिका ने नगर क्षेत्र के स्कूलों को 3 दिनों के लिए और शीतकालीन छुट्टी दिया है। कड़ाके की सर्दी के साथ बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने आज तीसरी बार स्कूलों को फिर से 3 दिनों के लिए शीतकालीन छुट्टी दिया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चीन और भारत को जोड़ने वाले राष्ट्रीय गौरव काली गंडकी कॉरिडोर के बेनी जोमसोंग कोरला सड़क अंतर्गत रोड के नीचे मुस्तांग के घर पछौंग गांवपालिका वार्ड नंबर 2 मारपा खोला में एक मोटरेबल पुल का निर्माण किया गया है। बेनी जोमसोंग कोरला रोड प्रोजेक्ट कार्यालय मुस्तांग ने 120 मीटर लंबे मोटरेबल पुल का निर्माण किया है। परियोजना के प्रमुख ध्रुव कुमार झा ने बताया कि पुल की सभी संरचनाओं और पहुंच पथों के निर्माण के बाद वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने, प्रविधि के विस्तार, जनशक्ति प्रबंधन और सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। 24वें सशस्त्र पुलिस दिवस के अवसर पर आज हलचक में आयोजित समारोह में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि सरकार सशस्त्र पुलिस को भविष्य में और अधिक प्रभावी संगठन से विकसित करने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। चितवन के सौराहा में पाले गए निजी हाथियों के कारण जब जंगली हाथियों का बस्ती में आना शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने निजी हाथियों को जंगल के पास ही एकीकृत करने की मांग की है। स्थानीय लोगों की मांग के बाद हाथी पालने वाले व्यवसायियों ने कहा है कि अगर सरकार जमीन मुहैया करा दे तो वे हाथी को एकीकृत तरीके से रखने को तैयार है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक रेल हादसे में कम 7 लोगों की मौत हुई है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों में ये अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद चेन पुलिंग से ट्रेन को रोक दिया गया और कई यात्री ट्रेन से उतर गए। इस समय दूसरी तरफ से बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कुछ यात्री आ गए। जिला मजिस्ट्रेट ने बीबीसी मराठी से बताया कि इस घटना में 12 यात्री घायल हुए हैं जिनका पचोरा ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है। फलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनीन में इजरायली सेना की कार्रवाई में 9 फलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइली सेना की कार्रवाई में 35 अन्य लोग घायल हुए हैं। फलिस्तीनी मीडिया की खबरों के मुताबिक शहर में कई हमले हुए हैं। शहर के अलावा ही राहत शिविरों में बड़ी संख्या में सैनिकों की हलचल हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सामाजिक संजाल संचालन प्रयोग तथा नियमन संबंधी विधेयक संसद में पेश करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। भुटवल के सुप्रीम सहकारी ठगी आरोप में जिला अदालत रूपंदेही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का बयान हुआ खत्म। और भारत महाराष्ट्र के ट्रेन हादसे में हुई 7 लोगों की मौत, कई अन्य लोग घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।